ये भक्त जनों भाइयों बहनों बच्चों बालक बालिकाओं समस्त सदस्यगण शारदा माँ सेवा संघ के सभी सदस्यों, आज मैं आपको गीता के अध्याय 13 का 23वां श्लोक, शायद हमने कल भी किया ये, लेकिन इसको फिर से दोहराती हूँ उसकी व्याख्या को, ताकि आप उस पिछले प्रसंग को अगले प्रसंग से जोड़ सके। तो या एवं वेति पोषण वक्तिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि नास्ता भूयो अविजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित व्यक्ति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। बहुत ऊंची बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम गृहस्थी लोग सोचते हैं कि हम जन्म हमें शायद मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें वर्ण जाति और आश्रम का ध्यान नहीं करना है, केवल ध्यान करना है कि हम गुणों से अलग हो जाएं, गुण ही गुणों में बरतते रहे हैं। ये देखें, ये लड़ाई झगड़ा होता है तो हाँ ये तो गुण है, तमो गुण है, लड़ रहे हैं कि वो धन वैभव, हाँ वे सतो गुण है, हम न फंसे उसमें, हम न उनसे जुड़ जाए गुणों से। अगर हम गृहस्थ का कार्य करते हुए इन गुणों से नहीं जुड़ेंगे तो हमें मुक्ति अवश्य मिलेगी। गृहस्थ का है या मेरे जैसे सन्यासी का है या किसी और का है, सवाल है हमें गुणों से, सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से नहीं बंधना है। ये तीनों ही हमें बांधते हैं। अगर सतोगुण सोने की हथकड़ी है तो रजोगुण चांदी की, और ये जो है तमोगुण ये लोहे की हथकड़ी है। हथकड़ियां तो हथकड़ी है, वो तो बांध ही देती है, इसलिए हमें इन तीनों हथकड़ियों से दूर रहना चाहिए और भगवान का नाम में उनके स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। लिखते हैं व्याख्या का जो साधक पूर्व श्लोक में आए हुए के अनुसार अपने को देश सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, अपने को सेल्फ को जीवात्मा को अपने आत्मा को, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने से गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृति जिन गुणों से संबंध उच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता। मुक्ति का मतलब है कि गुणों से नहीं बनना है ना। हमने देखा ना, मैंने अपने घर में देखा, अपने पिताजी को देखा कि गृहस्थ आश्रम है ना, संतान भी है और रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, तो फिर भी इस श्लोक को पढ़कर मेरे ध्यान में आता है कि पिताजी भी गुणों से नहीं बंधे हुए थे। 90 साल की आयु थी और कार्य भी सब करते थे, और मैंने कभी उनको कभी तो क्या 6 महीने मैंने उनको देखा, मैंने तो बाहर रहती थी, मैंने कभी उनको किसी भी इसमें बंधा हुआ नहीं देखा, और उन्होंने स्वयं बोल करके स्नेह दे करके प्राण त्यागे थे, तो वे तो बेस्ते थे। अब मैं स्वामी जी की बात करती हूँ, महाराज जी की, वो महर्षि थे, वो ऋषि थे, वे भगवान के अवतार थे, भक्त थे, जो कुछ भी थे कार्य वो हरेक करते थे। वो तो मोती का काम भी कर लेते थे, लोगों के जूते भी साफ करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पिताजी ने तो घर का किया, लेकिन महाराज जी तो जनता का करते थे, खाना भी बनाते थे, चाय भी बनाते थे, हम पढ़ रहे हैं कि रामलाल उसको चाय पिलाओ, रामलाल उसको चाय पिलाओ, लेकिन वो गुणों से नहीं बंधे, ना सतोगुण से बंधे, ना रजोगुण से, ना तमोगुण से, इसलिए उन्होंने शुरू किया करके जीव समाधि ले ली। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाते हैं, जो गुणों से नहीं बंधते, मतलब करना सब कुछ है, गुरुओं से बंद न अहम करना, मैं बोलना, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये गुरुओं से बंधना, चाहे वो सतोगुण है, चाहे वो रजोगुण है, चाहे वो तमोगुण है, काम कोई भी करो लेकिन कहीं भी किसी चीज से मत बंधो। श्लोक 24 ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मनम् अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापर ध्यान योग के द्वारा के संख्य योग के द्वारा के कर्म योग द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। मतलब मनुष्य को परमात्मा तत्व का अनुभव करना अवश्य कुछ लोग ध्यान लगाते हैं ना संख्य योग गुणों से गुण बढ़ते हैं अपने आप साक्षी होते तब क्या है करना लेकिन मैं नहीं करनी की मैं करता हूँ ओके कर्मियों के द्वारा संख्य ध्यान योग से संख्य योग से और कर्मयोग से तीनों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। हम ध्यान से भी भगवान को पा सकते हैं और संख्य योग से भी और कर्मयोग कर्मयोग सेवा संख्य योग या गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। खुश काम तो हर करना लेकिन उसमें हम नहीं लाना और ध्यान योग जैसे ऋषि मुनि सहस्रों वर्षों तक जंगल में बैठे रहते थे। अन्य श्लोक 25 अन्य तवेव मजा अनंत चित्त बाल ने अभे उपास होते अपनी चार श्रुति प्रायण जैसे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग संख्या योग कर्म आदि साधनों को नहीं जानते पर जो आम आदमी हमारे जैसे पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वो खुद तो उनको पता नहीं कि ध्यान योग कहीं शिक्षा नहीं मिली कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं मिली संख्या योग पढ़ा नहीं तो फिर वो क्या करते हैं कि जो जीवन में जैसे महाराज स्वामी जी उनको सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे वे सुन करने के अनुसार आचरण करने वाले फिर सुनने के बाद क्या करते हैं वैसे ही करते हैं जैसा कि महामुनि हमें बताते हैं जैसे कि भगवान के अवतार जब आते हैं बताते हैं। ऐसे मनुष्य भी मृत्यु को तल जाते हैं भव सागर से पार हो जाते हैं। जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है बेचारे पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ है लेकिन फिर भी तल जाते हैं। कैसे क्योंकि सुनते हैं फिर आचरण करते हैं। यह मैं अपने माता जी को उदाहरण दे सकती हूँ क्योंकि वो विद्यालय में शिक्षा नहीं ली थी लेकिन उन्होंने सब शास्त्रों को लगभग मेन मेन जो मुख्य मुख्य शास्त्र घर में पढ़े जाते थे पिताजी द्वारा उन सब को उन्होंने सुना था और उन पर पूर्ण आचरण वह करती थी। जिनका विवेक कमजोर है पर जिनके मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है देखिए पढ़े लिखे नहीं है लेकिन सुन के उस पर आचरण करते हैं और उनमें मन में इच्छा है कि हमें ये भगवान भव सागर से पार ले जाओ इस मृत्यु दंड से हमें मुक्त करो अथवा मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है। ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु से तर जाते ही नहीं है वो करते हैं हम भी तर सकते हैं लेकिन जो जीवन मुक्त है हमारे महाराज जी की तरह उनसे हम तत्व तो ज्ञान दें और फिर अपने जीवन में उसमें आचरण में लाए तो हम भी तर सकते हैं तर जाते हैं। श्लोक 26 यावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षत्र क्षत्र जस्योंगाता तद्विद्वी भर्तर शह हे भर्त मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के सिंह से उत्पन्न हुए समझो। ये पहले वाली बात आ गई क्षेत्र क्या है जमीन पृथ्वी और क्षेत्र कौन है उसका मालिक भगवान। तो जो भी उनके दोनों के सिंह से पैदा होते हैं जितने भी प्राणी है चाहे वो चर है चाहे अचर है चाहे स्थावर है चाहे चंदन फिरने वाले हैं स्थावर क्या होता है जो की जगह स्थित भिक्षा भी सब के सब क्षेत्र क्षेत्र के स्वयं से ही पैदा होते हैं। मतलब इस प्रकृति में कुदरत में जो देखे ना आप एक छोटा सा पौधा या घास जो उगा हुआ है वो कैसे हुआ क्षेत्र और क्षेत्र का आपस में संबंध हुआ तो वो पैदा हो गया। व्यक्ति कोई शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है ये क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है। क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है कि जब हम मैं मेरा और मेरे लिए मानती हूँ। सजातीय नहीं होता है तो विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ साथ क्षेत्र का संयोग कैसे संभव है? अब प्रश्न पैदा होता है कि जब भी किसी से संयोग होता है तो सजातीय चाहिए, शादी में बोलता नहीं की अपनी जात को होना चाहिए, विजातीय नहीं होना चाहिए। तो क्षेत्र तो जड़ है, मगर शरीर तो जड़ है, आत्मा जो है वो चेतन है, इन दोनों का संयोग कैसे हो गया? ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता है, ऐसे ही क्षेत्र का भी संयोग नहीं हो सकता। तथा अपने परमात्मा का अंश होने के कारण जीव में ये शक्ति है कि जो विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। ऐसे तो विजातीय है न, लेकिन कहाँ इसका होगा संयोग? क्योंकि क्षेत्र में आत्मा में शक्ति है और वो जड़ को पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है, उसमें स्वतंत्र परमात्मा का द्वारा प्रदत्त है। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके क्षेत्र ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। क्षेत्र में जीव है, क्षेत्र जड़ है, जीव चेतन है, प्रकृति जड़ है, पर जब जीव ने प्रकृति को अपना मान लिया, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा खेत है, ये मेरा बगीचा, तो फंस गया जन्म के चक्कर में। श्लोक 27। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित समरूप से स्थित देखता है। यही वस्त्र में से दिखता है। बड़ा सुंदर श्लोक है और इसका अर्थ दो ही लाइनों में दिया गया है। संपूर्ण प्राणियों में नष्ट होते हुए, जैसे को मरा या कोई वृक्ष सूख गया है, प्राणियों परमेश्वर को नाश रहित समरूप से स्थित देखता है। क्या वृक्ष तो सूख गया, पत्ते झड़ गए, वो लकड़ी ठोंठ बन गया, लेकिन फिर भी अगर हम उसमें भगवान को देखते हैं तो वो हम सही देखते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। भले वृक्ष सूख गया, पत्ते झड़ गए, फल नहीं लगते हैं, या मनुष्य मर गया, जैसे ही ये हो गया, दुबला हो गया, पतला हो गया, डेथ हो गई, लेकिन भगवान तो वही ही है। इसलिए जो ऐसा समझ लेता है वो वास्तव में सही देखता है। यहाँ जो व्याख्या दी है वो इस प्रकार है। आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यो का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा सत्ता में कभी महासर्ग महाप्रलय होते हैं। देखो छोटी छोटी बात तो क्या महाप्रलय होती है, महासर्ग बनते हैं, कभी स्वर्ग और प्रलय, कभी महा बड़े बड़े होते हैं, कभी छोटे, कभी स्वर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता जो की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। ऐसे रहना है हमको, वध हो या मुक्त, पापी हो धर्मात्मा, ये निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित रहती है। प्रतिशन विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, मेरे सब कुछ हो रहा है, फिर भी हमारी आत्मा परमात्मा को क्या देखती है? वह निर्लिप्त है, निर्विकार है, यह हम ही खुद ही नहीं वास्तव में से ही देखता है। तात्पर्य तो यह है कि जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। जो ये देखता है कि शरीर मेरा मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, बस गया वो, इसको उसका देखना नहीं सही नहीं है। परंतु जो सदा जो की लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्म तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। जो ये देखता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा से जुड़ा हूँ, उसका देखना सही है। श्लोक 28। सम पश्यन् सर्वत्र सम दस्थितमीश्वरम् हिमस्तात्मान प्रभु याति पराम गति, क्योंकि सब जगह समूप से स्थित ईश्वर को समूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य जो सब जगह भगवान को देखता है समूह से, वो अपने को नहीं मारता, अपनी गति नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। उसकी व्याख्या है, जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, ये अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना है और अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है। अपनी हत्या क्या बताई उन्होंने, शरीर का जन्म होना, मृत्यु होना, विकार आने, रोग आने, उनको अपना तो वो हत्या करते है। श्लोक 29, प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा या पश्यति तथात्मानम् अकृतारम् स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रत्येक द्वारा की हुई जाति देखता है, वह अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है। ये यथा ये आया वो संख्या लोग गुणी गुणों में बढ़ते रहे हैं, जो ये देखता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये तो अपने आप हो रहा है। फूल खिल रहे हैं, सूख रहे हैं, कोई आदमी मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, मैं पहले बच्चा था, बचपन था, फिर जवान हुआ, जवान नहीं आया, फिर बूढ़ा हुआ, बुढ़ापा आया, लेकिन मैं नहीं हुआ, ये तो शरीर का काम ही ये होता रहेगा। ऐसा जो जानता है वो इसे ही जानता है। जितनी भी क्रियाएं होती है वह सब सब प्रकृति विभाग में ही होती होता है, प्रकृति का विभाग है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, प्रत्येक मानानी गुणे कर्मानी सर्वशा गीता गए 3 श्लोक स्थाई। गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, गुणा गुणेशु बढ़ते 28। गुणों को स्वयं न कोई करता है ही नहीं, नान्य गुणभ्य करता मेरा दृष्टान पश्यति। 14, इंद्रिया इंद्रियों के विषय में बढ़ती है। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रतिदिन नहीं है, अतः प्रति कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र क्रिया नहीं होती। देखो इन्हें समझने वाली बात है, बड़ी सुंदर बात है कि प्रत्येक कभी किंचन मात्र भी अक्रिय होती लगी रहती हो। जैसे हम महिलाएं कोई न कोई काम ढूंढती रहती है, इसलिए महिलाओं को स्त्री को प्रत्येक का रूप दिया है, लेकिन पुरुष में कभी किंचित भगवान ने परमात्मा में जरा भी क्रिया बहुत स्थिर निर्णय बैठा हुआ। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला संख्य योगी स्वयं ले मात्र भी कुछ नहीं करता, ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करो मिति युक्तो मन ने तत्वता 5-8 स्वयं न करता है न करवाता है, नैव कुर्वन कार्य ये पूरी शरीर में रहता हुए न करता है न लिप्त होता है। देखो शरीर तो अभी कौन तया न करोपी न लिप्त है। 13-31 जो आत्मा को कर्ता मानता है वो दुर्मति ठीक नहीं सुनता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। श्लोक 30, यदा भूत पृथक भाव एक मनु पश्यति तथेव च विस्तारम भ्रम संपद्यते तथा। इस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक व्यक्ति ही से देखता है और उस व्यक्ति से उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में भ्रम को प्राप्त हो जाता है। बस इतने दिन अपनी नजर ही बदलनी है, दृष्टि बदलनी है, ये सब कुछ भगवान में हो रहा है, आगे वाले कुछ भी नहीं। उस वर्ग मनुष्य हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक व्यक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति में स्थित रहते हैं और व्यक्ति में ही लीन होते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। क्या जानने हमको संख्य योग के द्वारा की जितने प्राणियों के सारी सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के प्राणी मात्र एक मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र जो की पतंग भी आ जाएंगे एक स्थूल स्थूलीय जो हाड़ मास का चोरा जिसको कहते हैं सूक्ष्म मन बुद्धि चितंकार तथा कारणशील जिसमें हमारे शुभ अशुभ संस्कार रहते हैं ये सब यहाँ से पैदा होते हैं तीनों एक ही कुदरत से एक ही प्रकृति से और प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और फिर प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं आत्मा तो अलग है ऐसा देखने वाला भगवान को प्राप्त हो जाता है। कल हम आगे 31 श्लोक से करेंगे गीता के पहले अध्याय का पारायण और उसके भाव तथा अर्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि हमें भी कुछ चेतना आए और हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को भगवत प्राप्ति जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको भली भांति प्राप्त कर पाए। आगे अब मैं आपको रामलाल सूद जी की छोटी सी जो बुकलेट है स्वामी सेवकदास जी महाराज लाओ में रखकर उसका जो अगला प्रसंग है उसको पढ़कर सुनाती हूँ। कुंडलनी योग के विषय में हमने कुछ जाना शायद आप लोगों को कुछ पता भी लग गया होगा और कुछ लोग हम लोग कुछ भूल भी जाते हैं भूल भी गए होंगे तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इन कुंडलनी योगा मूलाधार चक्र एट द बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज द सीट ऑफ कुंडलनी एंड पृथ्वी तत्व बताया कल कि पृथ्वी तत्व जो है ये हमारे मूलाधार में होता है कहाँ एट द बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के नीचे ये दसी सीट है कहाँ कुंडली कहाँ रहती है और पृथ्वी तत्व कहाँ रहता है हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो नीचे पहुँच जाती है वहाँ इसका स्थान है। बाई कॉन्किंग द पृथ्वी तत्व और लोभा या कुंडली जैसे बूस्ट अगर हम लोभ को जीत ले लालच न करें और अगर लोभ जीत लिया तो हमने समझो पृथ्वी तत्व जीत लिया पहला तत्व जो है फाइव एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट उसमें क्या होता है कि हमारी जो कुंडली सोई है कहते हैं सांप की भांति होती है अपना लोन लगा करके रेड़ा बैठी रहती है लेकिन जब मनुष्य ध्यान करता है पृथ्वी तत्व का तो करके होता है लोभ को जीत लेता है लोभ जीत लिया तो कुंडली को थोड़ी जागने की शक्ति मिलती है बूस्ट में गैस से बूस्ट एनर्जी मिलती है और वो राइज ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और इस तरह से डोरमेंट स्टेट ऑफ कुंडली एंड्स डोरमेंट स्टेट ऑफ कुंडली क्या हुआ ये जो बैठी रहती है सिर्फ चक्कर लगाती सांप की तरह उसका एंड मतलब खत्म हो जाता है और देयर कम्स और वहाँ पर क्या होता है मूवमेंट आती है गति आ जाती है सुपर नेचुरल पावर नाइन गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कुंडली एट द मूलाधारा ये विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के भीतर जितनी अलौकिक शक्ति है वो वहाँ पर कुंडली के रूप में मूलाधार में स्थित है। द फर्स्ट चक्र विच नीड्स टू बी वेकन बाय प्राणायाम प्रथम चक्र है ये मूलाधार इसको हम प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा जीत सकते हैं जगा सकते हैं वेकंड दैट इज कॉल्ड द क्रिया योग उसको ही संत लोग क्रिया योग कहते हैं क्रिया योगा देन इट इज अवेकंड इट बिकम एम्बोडीमेंट ऑफ कॉस्मिक लाइट एंड एनर्जी और जब ये पूरा धार चक्कर जो है ये जाग जाता है तो ये क्या बन जाता है एम्बोडीमेंट ऑफ कॉस्मिक लाइट भगवान की दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है प्रकाश ही नहीं एनर्जी भी शक्ति है प्रकाश दोनों के रूप में वो कॉस्मिक मतलब रंगीय शक्ति भगवान की भगवान का प्रकाश भगवती है प्रकाश मूलाधार इज आल्सो कॉल्ड पेल्विक्स मूलाधार को इंग्लिश में पेल्विक्स कहते हैं। मेडिटेशन ऑन दिस चक्र लाइन गुड हेल्थ अगर हम करें तो उससे हेल्थ भी अच्छी होती है और कैपेबिलिटी योग्यता आती है ब्रिलियंस मतलब हम इंटेलिजेंट होते हैं ब्रिलियंट होते हैं एंड एमिनेंस इन द लाइफ, जो हमारे जीवन में शांति भी आती है। अब हमने फर्स्ट चक्कर देखा है, मूलाधार चक्कर इसका नाम है, और यह कुंडली सो जाती है, लेकिन इसको जगाने के लिए हम ध्यान करते हैं तो ये और लोभ को छोड़ देते हैं। ध्यान अकेले से नहीं होगा, लोभ छोड़ना होगा, तो ये जाग जाती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर छिपी जाती है। अब हम सेकंड चिमनी, इसको चिमनी बोला ना उन्होंने, तीसरी तत्व क्या है, ये फर्स्ट चिमनी है, बड़ी घनी है ये। अब दूसरी चिमनी क्या है, द सेकंड चिमनी, दैट इज कवरिंग द कॉस्मिक लाइट ऑफ आत्मा, दैट ऑफ जल तत्व। अब हमारी जो दैवीय प्रकाश है आत्मा का, वो किसके द्वारा नहीं थका है, वो दूसरी एक और चिमनी लगी है उससे आगे, वो है जल, दूसरा तत्व, सेकंड एलिमेंट, वाटर, दैट एलिमेंट टू अवर नियर एंड नियर आवाज मुख लो, बिकॉज द वाटर सिंबलाइज द ब्लड रिलेशन एंड अवर बिगेस्ट अटैचमेंट टू अवर ब्लड रिलेशन। देखिए बहुत सुंदर बताया उन्होंने, इसको बोलते आसक्ति, पहला है ना लोभ, दूसरा है मोह, वो बोलो इसको, द अटैचमेंट टू अवर डियर, हमारे जो अपने नजदीकी रिश्तेदार हैं उनसे बहुत मोह करना, क्योंकि ये जो ये है ब्लड जो है वो क्या होता है, जहाँ हमारा ब्लड होता है, ब्लड रिलेशन होता है, कोई भाई है कोई बहन है, यहाँ तक कि कईयों का मुंह आगे भाई का पोते धोते आगे तक चलता है, इसको हम इंग्लिश में अटैचमेंट कहते हैं। और ये अटैचमेंट जो है ब्लड के कारण है, रिलेशन ब्लड रिलेशन है इसलिए है, और ये जल तत्व है क्योंकि ब्लड भी जल की भांति बहता है, और हमने पृथ्वी तत्व में क्या देखा, सोना चांदी से ज्वाला दो भी ठोस है, और ये ब्लड जो है ये तरल है, बहता है ब्लड, तो ये दूसरा अटैचमेंट, दैट इज मोहा और अटैचमेंट, मोहा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जल तत्व, ये कहाँ से पैदा होता है, जल तत्व से। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस बाटली चिमनी ऑफ मोहा तत्व, वी हैव टू कीप अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अटैचमेंट्स, कहते हैं अगर हमें दूसरा तत्व जीतना है जल तत्व, या दूसरी चिमनी को तोड़ना है जो हमारे आत्मा के प्रकाश को ढक रही है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे रिश्तेदारों के साथ वो है ओल्ड काइंड, यानी एक ही काइंड, वो के कई कारण होते हैं, धन हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है, वैसे ही किसी को बड़ा मोह होता है अपने अपनों से, तो वो दूसरी चीज नहीं है। द सेकंड चक्र, द स्वाधिष्ठान चक्र, हाइपोगेस्टिक प्लेक्सस एज वी कॉल इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है इसको, रिप्रेजेंट्स द जल तत्व। तो सेकंड चक्र कौन है, इसको कहते हैं स्वाधिष्ठान, पहला कौन आया याद है आपको, मूलाधार, और दूसरा आया स्वाधिष्ठान, और ये जल तत्व से बना। As soon as we transgress the bond of Rishvi Tattva by getting free of lobha or the greed for worldly wealth, जैसे हम मोह को छोड़ते हैं, पृथ्वी तत्व को जीत लेते हैं, तो हमने क्या जीत लिया, संसार को जीत लिया। द कॉस्मिक पावर कुंडली राइज अप टू द लेवल ऑफ स्वाधिष्ठान चक्र। अब क्या होता है, दूसरा चक्र कौन सा बताया हमने, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान, लेकिन जब हम लोभ को जीत लेते हैं, हमें उनका कि हमने क्या करना, जितना हमने खाना था वो हमारे पास है, पहले ना वो भी ज्यादा, हमने क्या करना, जब इस लोभ को जीत लेते हैं तो क्या होता है, हमारी जो शक्ति है कुंडली शक्ति जो है वो स्वाधिष्ठान में से ऊपर, अगला स्थान है स्वाधिष्ठान, विच इज शोन एज सिक्स पेटल लोटस। तो फर्स्ट था वो टू, उसमें टू पेटल थे, दो पत्तियां थी, लेकिन जो दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है इसमें छह पत्तियां होती है, लोटस है ये, कमल का फूल है। आगे चलिए, कुंडली राइजेस फ्रॉम दिस लेवल ओनली व्हेन वी पास द वर्ल्डली अटैचमेंट। अब कुंडली से आगे जाएगी, लेकिन कब जाएगी, जब हम दुनिया के संसार के मोह को छोड़ेंगे। When we do our duty without any attachment, when we have no आसक्ति और अटैचमेंट टू अवर रिलेटिव बट वी डू अवर ड्यूटी टुवर्ड्स देम विदाउट फेलिंग इन अ प्रॉपर मैनर देन द सेकंड वे इन द light of Atma is lifted and the Kundalini rises up from the level of Swadhisthan Chakra. Ab batate hain ki jab humne attachment khatam kar di, moh khatam kar diya, isse apne rishtedaron se, apne doston se, apne bachchon se, woh kevan hum kya karte hain, duty karte hain, kartavya ko karte hain, jiske prati karte hain, to kya hota hai, hamari atma par jo dusra ghumghat hai, दूसरी चद्दर ढकी हुई है जल तत्व की, वो हट जाती है आत्मा के ऊपर से, वो आत्मा के थोड़े थोड़े आगे पता लगता की है तब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है और स्वादिष्ठान में आ जाती है। पहला कौन सा था चक्र याद होगा उसी को याद कीजिए, वो दूसरा स्वादिष्ठान पहला मूला था, दूसरा स्वादिष्ठान चक्का, यहाँ तक कुंडली शक्ति आ गई, लेकिन कब आई, जब हमने लोभ को और मोह को जीत लिया, then they to think wills on the light of Atma are lifted, we can have a glimpse of the cosmic light of Atma to some extent। कहते हैं कि जब दो पर्दे ये हटा दिए जाते हैं, क्या लोभ और मोह, तो आत्मा की रोशनी का एक ग्लिम्प्स थोड़ी सी दिखाई देने लगती है, कोई आत्मा नहीं ऐसी एक चिंगारी मात्र। द थर्ड व्हील ऑन द लाइट ऑफ आत्मा इज दैट ऑफ अग्नि तत्व, द थर्ड चक्र इज कॉल्ड मणिपुर चक्र। अब अग्नि तत्व है और चक्र का नाम है मणिपुर, दो एलिमेंट हमने किए, दो तत्व हमने किए, कौन कौन से, पृथ्वी और जल, अब हम कौन सा कर रहे हैं, अग्नि। अग्नि तत्व में कौन सा नील है, उसको कैसे हटता है, उसको इसका आधार है मणिपुर चक्र, ये आ गई हमारी नाभि, मणिपुर चक्र का है नाभि। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 पेटल लोटस, इसमें 10 पत्ते होते हैं कमल के फूल के। इट इज आल्सो कॉल्ड सोलर प्लेक्सस, इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं नाभि को। इट रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व एंड अग्नि तत्व कैरीज एंगर, और अग्नि तत्व से मनुष्य को क्या मिलता है, गुस्सा करना। व्हेन मैन गेट्स एंग्री ही लूजेस हिज अवेयरनेस एंड एज द वर्ल्ड गोस, जब मनुष्य को गुस्सा चढ़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है, एंग्री इज हाफ मैडनेस, क्रोध क्या है, आधा पागलपन है। मैन बिहेव लाइक मैड पीपल, क्रोध में जब मनुष्य आता है तो पागल जैसा होता है। द नॉलेज द इंटेलिजेंस एंड द लाइट ऑफ आत्मा इज लॉस्ट इन द मैडनेस ऑफ एंगर, आत्मा का प्रकाश बुद्धिमता और जितना भी ज्ञान है वो क्रोध के कारण खत्म हो जाता है। दिस चक्र लाइज इन द नाभि स्थान, मैंने आपको पहले बता दिया, द मिडल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एन एंग्री मैन कैन नॉट रियलाइज एनीथिंग, जो क्रोध मनुष्य तो उसको कुछ समझ नहीं आती। व्हाट टू स्पीक ऑफ द आत्मा, आत्मा का तो उसको सवाल ही नहीं पैदा होता, जब उसको दुनिया में बातचीत करने का पता नहीं चलता कि उसको क्या बोलना है, तो आत्मा के बारे में वो क्या बोलेगा। सो लॉन्ग वी डू नॉट शन द एंगर, जब तक हम शन खत्म करते हैं, गुस्से को खत्म नहीं कर लेते, अब माइंड कैन नॉट बी कंसेंट्रेटेड एंड विदाउट ए काम माइंड, जब तक हम गुस्से को खत्म नहीं करते तब तक हमारा मन जो है वो ध्यान में नहीं लगेगा, और विदाउट ए काम माइंड, शांत मन के बिना नथिंग कैन बी, कुछ भी नहीं हम प्राप्त कर सकते, जो कुछ हमें मिलता है वो शांत मन से मिलता है। हम देखते हैं मन शांत है, लेकिन बच्चा जाता है छोटा सा कंकर डाल देता है जोर से फेंकता है तो पानी हिलता है और बड़ी देर तक हिलता रहता है। ऐसे दुनिया के बातें जो है जो हम इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं, हमारे मन में जाके खलबली मचा देते हैं। सो द थर्ड ऑब्स्टिकल इन द रियलाइजेशन ऑफ आत्मा इज एंगर, इसलिए आत्मा को रियलाइज करने के लिए क्या है, तीसरा मुस्टेकल होता है बीच में रुकावट, वो क्या है क्रोध। आप मरीज एंगर बीच कम्स फ्रॉम द अग्नि तत्व, जो अग्नि तत्व से आता है एंड इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कॉन्कर। कहते दो बातें तो बड़ी आसान थी लेकिन उसके क्रोध को जीतना बहुत मुश्किल है। इवन लॉर्ड शंकर महादेव यूज टू बी एंग्री समटाइम्स, कभी कभी हम कहते हैं महादेव शिव जी को भी गुस्सा आ जाता था, क्रोध आ जाता था। जब उन्हें क्रोध आता था वो क्या करते थे, स्टार्टेड डूइंग तांडव नृत्य, वो तांडव करते थे, नृत्य करते गुस्से में आते। बट इन कंपेरिजन लॉर्ड कृष्णा हैड फुल कंट्रोल ऑन एंगर, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए तो भगवान कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आता था, उनको अपने गुस्से पर एक नियंत्रण था, कंट्रोल था। He listened to the bad news called by शिशुपाला, उन्होंने कई बार शिशुपाला शिशुपाल द्वारा दी गई गालियों को सुना एंड रिमेन स्माइलिंग, और हंसते ही रहे। Never showed any anger, कभी गुस्सा नहीं किया। एंड आफ्टर गिविंग ए लास्ट वार्निंग बिहेवियर हिम विद हिज सुदर्शन, उन्होंने उनको उसको चेतावनी भी दी थी। और लास्ट वार्निंग में उन्होंने क्या किया कि सुदर्शन चक्कर से उसका सिर काट दिया। विद ए स्माइल ऑन हिज लिप्स, उस वक्त भी भगवान हंस रहे थे, वो सब सुनते नहीं किया। He be conquering also and be at peace with a calm mind, अगर हम अपने गुस्से को जीत लें और हमारा मन शांत हो जाए, this fiery veil on the cosmic light of atma is lifted, तो हमारे भी आत्मा पर ये जो तीसरा पर्दा पड़ा हुआ है ये हट जाएगा। और एंड द कुंडली राइजेज द मणिपुरा चक्र, तब ये कुंडली जो है मणिपुर चक्र से पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। एंड द लाइट ऑफ आत्मा इज नाउ क्वाइट विजिबल, जब कुंडली यहाँ नाभि में आती है तो आत्मा दर्शन होने लगते हैं। दो इट इज येट टू बी लाइट, व्हाट काइंड ऑफ लाइट इट इज, जिन्होंने अनुभव किया, जैसे रामलाल जी लिखते हैं तो उन्होंने अनुभव किया है कि जब ये मणिपुर में आती है और हम गुस्से को जीत लेते हैं तो हमें आत्मा का प्रकाश विजिबल देखने को मिलता है, क्वाइट विजिबल। दो इट इज यट टू बी रियलाइज, लेकिन अभी तक अनुभूति नहीं होती है कि एक प्रकाश है क्या। अब आइए चौथे वीर पर, द फोर्थ वीर लॉन्गर लाइट ऑफ आत्मा इज दैट ऑफ वायु तत्व, फोर्थ एलिमेंट क्या है वायु। अब तो आत्मा पर चौथा पर्दा कौन सा है, वायु का है, वायु की चिमनी है। विच इज वेरी सबलाइम, जो बड़ी ही सूक्ष्म है, जैसे एक पर्दा, महीन पर्दा चले ना आजकल बड़े पतले पतले जाले वाले, ऐसा पर्दा लगा कोई। दिस व्हील इज नॉट नॉर्मली विजिबल, यहाँ तक कि वो दिखाई भी नहीं देता है, बट इट कैन बी रियलाइज, इस पर्दे को हम अनुभव कर सकते हैं। इट इंडेस टू अवर सबलाइन दिस इज फॉर नेम एंड फेम, यहाँ कहाँ फंसते हैं आकर के कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा फेम होना चाहिए, यश मिलना चाहिए, मुझे लग्जरी मिलनी चाहिए। विश इज फॉर द ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूटीफुल थिंग्स एंड एम्बिशंस इन लाइफ, मतलब क्या होता है इसमें कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, बड़ी बड़ी इच्छाएं हमारी पूरी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, ऐसे आराम होना चाहिए, और बड़ी बड़ी चीजें हमें मिलनी चाहिए, हम लोग हमारी बड़ी बड़ी एम्बिशन जो आशाएं जो है जिंदगी में वो पूरी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टीयर क्लियर ऑफ दीज सबलाइन विशेज, द योगी हैज टू सरेंडर हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। अब इसको कैसे जीते, उसको तो बताया कैसे जीते, लेकिन इसको कैसे जीतना है इन चीजों को। तो योगी कैसे करते हैं कि अपने आप को भगवान के शरण में रख देते हैं, सरेंडर हिमसेल्फ टू द विल ऑफ गॉड, कि भगवान तेरी जैसी इच्छा, जैसे जस्ट एज लॉर्ड क्राइस्ट सेड, ईसा मसीह ने क्या कहा, thy will shall prevail, भगवान आपकी इच्छा ही हो या होगी। अदरवाइज वन हैज टू टेक अनदर बर्थ ऑफ फुलफिलिंग दी सबलाइन विशेज, अगर हम भगवान को प्रतीक्षा में नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे भगवान तेरी इच्छा, उनका तो गला, उनको तो फांसी दी जा रही थी लेकिन लटकाया जा रहा था, तो तब भी कहा भगवत भगवान आपकी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमें भी यही कहना चाहिए कितना भी दुख आ जाए संकट आ जाए भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो। अदरवाइज वन हैज टू टेक अनदर बर्थ ऑफ फूड ब्रिंग दी सबलाइन विशेष, नहीं तो मनुष्य को बड़ी सूक्ष्म दो इच्छाएं जिनका पता भी नहीं चलता उनके लिए को जन्म लेना पड़ेगा। समटाइम्स द योगी हु है बाईपास ऑल दीज विशेष, कई बार योगी इन सब इच्छाओं से आगे निकल जाते हैं, इनको पास कर लेते हैं। हैव सिल वन लास्ट विश, एक और इनकी अंतिम इच्छा रह जाती है, दैट इज ऑफ डूइंग गुड टू ह्यूमैनिटी, वो हमारे जैसे होंगे, एक इच्छा रह जाती है कि लोगों का भला होना चाहिए। एंड टू एंड द वॉर्स एंड सफरिंग ऑफ द पीपल, क्या होना चाहिए, मानवता का भला हो, जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो और जो वो सफरिंग है दुखी है उनको भी उनका दुख दूर होना चाहिए। सो दे हैव टू टेक वर्स अगेन, ऐसे लोगों को भी जन्म लेना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक मेरे भारत का एक कुत्ता भी भूखा रहेगा मैं तब तक भारत वर्ष में बार बार जन्म लेके आऊंगा। ये है गुड विल ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा सोचना। All the desires are fulfilled and no such desires remains. तो फिर क्या हो, जब हमारी सारी डिजायर ये भी खत्म हो जाए दुनिया का भला करने की, ये नहीं खत्म होती है, वो तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आई जाती है। तो तब क्या होगा, तब दिस चक्कर इस काल का कार्डिक, ये दे चक्कर आना हर चक्कर बोलते इसको कॉम्प्लेक्स, इसको इंग्लिश में बोला कार्डिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज शोन एज 12 पेटल्स, इसके बाद लोटस, ये हार्ट, ये हार्ट के पास है, हमारे हृदय के पास ये चक्कर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनहत चक्र, हिंदी में उसको अनहत चक्र कहते हैं। मेडिटेशन ऑन दिस चक्र कीप्स वन अवे फ्रॉम हार्ट अटैक्स, अगर हम यहाँ मेडिटेशन करें ना चक्र को देखें हृदय के पास तो हार्ट अटैक नहीं होता। दिस चक्र आल्सो इन्फ्लुएंस द माइंड, जिससे हमारे मन का भी पता लगता है। टू लिफ्ट द सबलाइन व्हील ऑफ वायु तत्व और माना इज वेरी डिफिकल्ट, बोलते है तो आसान था, अब एक वायु तत्व है जिसको जीतना और बहुत मुश्किल है। बिकॉज अवर माइंड कैन नॉट स्टिल, क्योंकि हमारा मन जो है वायु से भी तेज चलता है, वायु तो थोड़ा लगता है कहीं, अगर आपके वहाँ बारिश हो गई तो मैं कहती नहीं है हमारे यहाँ नहीं हुई बारिश, थोड़ी टाइम में आ जाती है, लेकिन मन जो मैं यहाँ बैठी और मन चला जाए सुंदरता जी के पास, वो इतना तेज चलता है। सुंदरता की अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका क्या वो आकाश में पहुँच गया। It always has some desires and ambitions rising one after the other. और मन की एक क्वालिटी बोलो, बैड क्वालिटी बोलो, कि मन क्या करता रहता है, हमेशा इसके पास कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ एम्बिशंस होती हैं, बड़ी एम्बिशन बड़ी बड़ी चाह, एक उठती है उसके बाद दूसरी उठती है, पता नहीं चलता मन को, हमें पता नहीं चलता कि हमारा मन क्या सोच रहा है क्या कर रहा है। माइंड हैज बीन कंपेयर्ड टू एन ओशन इन विच वेव कंटिन्यूस टू राइज एट ऑल टाइम्स, मन की तुलना ही उन्होंने इस प्रकार की है, एक समुद्र से की है, सागर से की है, जिसमें कि हमेशा कोई ना कोई लहर उठती रहती है, हमेशा समुद्र शांत है खड़ा ही। मैंने प्रशांत महासागर देखा सिंगापुर में, सरला जी जब मुझे ले गई और साथ में शिवानी भी थी, तो प्रशांत महासागर के किनारे हम खड़े थे, मैंने कहा सरला जी आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ड्यू टू शिवानी, मैं आज प्रशांत महासागर के किनारे पर आके खड़ी हूँ, और जैसा मैंने सोचा था इंग्लिश में, जैसा मैंने पढ़ा था पैसिफिक ओशन और हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, तो वैसा ही शांत है, सचमुच प्रशांत महासागर जो है वो शांत है, उसमें लहर ही नहीं आती। देखी मैं गई पूजा की साधन की, उन्होंने मेरे से पूजा करवाई, लेकिन उसमें जैसी लहर मैंने वहाँ देखी है जगन्नाथपुरी में उठती ऊंची लहर उठती है और फिर इंसान उसमें नहा भी लेता है, फिर लहर चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, बस यही काम लगा हुआ है। लेकिन हमें शांत होना है, पेस्ट कोचिंग बनना है। One after the other, normally we see only the waves and think that is all the sea. और पता क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो waves है उन्हीं को देखते रहते हैं, ये आई ये आई, ऐसे तो करते थे हम जगन्नाथपुरी में और वहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे, गोवा में गए और जहाँ हम अरब सागर को देखा, हमने हिंद महासागर को देखा, है ना, जितने भी सागर देखे उसमें बड़ी बड़ी लहरें देखी जिसमें मनुष्य नहा लेता है पूरी तरह से, लेकिन उठती रहती है तो। और हम सोचते हैं कि ये समुन्द्र है, जो असली समुन्द्र आगे बड़ा गहन शांत उसको हम देखते हैं। इन फैक्ट ओशन इज अवे फ्रॉम द वेव्स, राइटर लिखते हैं कि असली में समुन्द्र वो नहीं है, लहरें नहीं है, वो तो आगे जाकर है, अवे फ्रॉम द वेव्स। इफ वी गो इन द मिडल ऑफ द ओशन, अगर हम समुन्द्र के मिडल में जाए, मध्य में जाए, देयर देयर आर नो वेव्स, जहाँ की कोई बोल है नहीं है, वेरी फ्यू वेव है, तो बहुत कम है, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओशन, तब हम समझेंगे कि ओशन इज व्हाट द ओशन इज, कि ओशन है क्या। ऐसे ही जब हम मन में उठने वाली इतनी लहरें, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, उसके पास जाना है, वो आया वो गया, ये घर ऐसा है वैसा, यही उठता रहता कुछ न कुछ, तो वो जब शांत हो जाएगा सब, तो हमें अपना मन पूरा एक समुन्द्र की भांति, ओशन की भांति दिखाई देगा, जिसमें हम बड़े अच्छी अच्छी चीजें वहाँ से ले सकते हैं। जैसे ओशन के भीतर से डुबकी लगाते हैं, जब वो लोग डुबकी लगाने वाले तो मोती निकालते हैं, बहुत कुछ निकलता है। ऐसे ही हम भी अपने मन रूपी समुन्द्र से बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे बातें निकाल सकते हैं। इन द सेम वे थॉट्स कम टू अवर माइंड वन आफ्टर अनदर, राइटर लिखते हैं कि इसी तरह से जैसे वो वेव जा रही हैं, ऐसे हमारे मन से भी एक वेव जाती है, एक विचार उठता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आता है। वी कैन अंडरस्टैंड द माइंड ओनली देन इट इज काम, हम अपने मन को तभी जान सकते हैं जब ये शांत होगा, इसमें कोई विचार नहीं आएगा, पीसफुल होगा, और डिजायरलेस मतलब उसमें कोई इच्छा नहीं होगी, और कंसंट्रेटेड इन मेडिटेशन हमारा मन ध्यान में लग जाए, तब हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज माइंड, माइंड है क्या, मन है क्या। ओनली कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन द नेम ऑफ ऑलमाइटी कैन मेक अस एबल टू बाई पास द ऑब्स्टेकल्स एंड लिफ्ट द व्हील ऑफ वायु तत्व। अब राइटर लिखते हैं कि अगर वायु तत्व से भी इस व्हील को भी, इस घूंघट को भी अगर हटाना है, इस पर्दे को भी अगर हटाना है, तो क्या करना है, हमें भगवान के नाम का ध्यान करना है, और सब इससे क्या होगा, सब ऑब्स्टेकल सब बाधाएं दूर हो जाएंगी जो वायु तत्व से आती है फ्रॉम द लाइट ऑफ आत्मा। बट दिस नीड्स ए लॉन्ग एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लेकिन कहते हैं इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता, कॉन्स्टेंट लगातार और लंबा, इसलिए हमें उसको मन की लहरों को हटा करके मन की गहराई में जाना है, और फिर हम देखेंगे कि मन में क्या है, फिर इससे क्या होगा। इफ वी हैव नो डिजायर्स इन अवर माइंड द लाइट ऑफ ऑलमाइटी विल ऑटोमेटिकली कम टू अस, तो फिर क्या होगा, जब मन में कोई डिजायर नहीं है, मन शांत है, तो क्या दिखेगा, लाइट ऑफ भगवान का प्रकाश दिखेगा और जो हमारी तरफ आता है। In this stage, we can clearly visualize the bliss and light of Atma. इस स्टेज पर, इस स्तर पर जब हम आते हैं, वायु तत्व को कंट्रोल करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली विजुलाइज देखते हैं, द ब्लिस एंड लाइट ऑफ आत्मा का प्रकाश हमें दिखाई देता है, कृपा मिलती है। दिस इज मेनली द स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान, इसी को मेडिटेशन और ध्यान कहते हैं। कहते हैं लोग बहुत बार पूछते हैं ध्यान क्या, ध्यान क्या। रामलाल जी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बट इज ध्यान मेडिटेशन है क्या। द लास्ट व्हील ऑन द कॉस्मिक लाइट ऑफ आत्मा इज दैट ऑफ स्पेस, तत्व। लास्ट जो पर्दा है आत्मा पर पड़ा हुआ वो है आकाश तत्व। इट इज इनविजिबल, वे दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल। शेड्स का लिफ्ट द ईगो द अहंकारा, इसको ऋषि मुनि कह देते हैं आकाश तत्व को कि ये अहंकार है, ईगो है। सचमुच ईगो अहंकार हमें अपने आप को बहुत भगवान से अलग कर देता है। द फीलिंग ऑफ जीवात्मा दैट इज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ऑलमाइटी ईगो ऑफ जीवा। देखो हम सुनते हैं कि हम अलग हैं, भगवान अलग है, जीवात्मा हमेशा। द फीलिंग ऑफ जीवात्मा, जीवात्मा की ये फीलिंग, ये सोचना, ये भाव आना जीवात्मा में कि मैं तो भगवान से अलग हूँ। किस लिए? क्योंकि हमें ईगो है अपने पन का, नया पन का जो ईगो है उससे हमें लगता है हम अलग है, भगवान अलग है। मैं जो है द फैक्ट इज दैट द लाइफ एंड कॉन्शियसनेस इज कॉन्टिन्यूस ऑल प्रिवेलिंग एंड इनविजिबल थिंग। कहते हैं असली में बात है द फैक्ट इज दैट द लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, हमारा जीवन और हमारी चेतना इज ए कॉन्टिन्यूस ऑल प्रिवेलिंग। असली में हमारी आत्मा जो है वो लगातार सब जगह फैली है, प्रिवेलिंग छाई हुई है और इनडिविजिबल है। इन डिविजन से उल्टा ही उसका डिविजन नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है। ऐसी चीज है जिसको हम काट नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। इट हैज नेवर बीन नोर कैन एवर बी डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सोल। हम इसको कभी भी किसी व्यक्ति की आत्मा में अलग नहीं कर सकते। एंड द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और साथ ही ब्रह्मांडीय चेतना को भी और आत्मा की चेतना को भी हम दो भागों में या कई भागों में नहीं बांट सकते। दैट वी आर अंडर इल्यूजन एंड डिल्यूजन एंड थिंक दैट वी आर सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ऑलमाइटी। और हम अफसोस ये है हम भ्रम में हैं, इल्यूजन में हैं, माया में हैं, डिल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम भगवान से अलग हैं। थिंग्स आर नॉट बट दे सीम टू बी सिंस सो मेनी वर्स वी हैव बीन रिगार्डिंग दैट थिंग्स आर नॉट बट दे सीम टू बी, बस में वो नहीं होती हैं जो हम सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है सिंस सो मेनी वर्स, इसलिए हमें कई जन्मों से भी है रिगार्डिंग अवसर, कई जन्मों से हमने अपने आप को क्या समझ लिया कि हम शरीर है एंड नॉट द सोल और आत्मा नहीं है। सो वी कंसिडर अवर बॉडी, इसलिए हम अपने शरीर को मानते हैं और जीवा और द एवॉर्ड ऑफ जीवा, क्या समझते हैं हम कि ये जीव है, हम ही जीव है, शरीर को मान लेते हैं। इन फैक्ट जीवा एंड ब्रह्मा आर वन, सो इज नॉट ब्रह्मा फॉर ब्रह्म लिखने में लिखने फिर पड़ते। इन फैक्ट जीव एंड ब्रह्म आर वन एंड द सेम थिंग, जीव और ब्रह्म एक ही चीज है, दो नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांड, पंजाबी में कहावत है। द ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय आकाश तत्व एंड विशुद्ध चक्र विच इज आल्सो कार्टोडिड प्लेक्सस, इट इज शोन बाय 16 पेटल्स। ये ईगो जो है ये इसको विशुद्ध चक्र बोलते हैं और ये इसमें 16 कमल की पत्तियां हैं और ये यहाँ गले के पास है जहाँ थायराइड वगैरह होता है ना, ये जो थ्रोट है शार्ट ओकार और द पावर ऑफ स्पीच। इससे क्या होता है, यहाँ से हम बोलते हैं ना, गला ठीक है तभी बोलते हैं ना, यहाँ हमें स्पीच की पावर मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है। When we cross the barrier of ego, or the sublime veil of akash tattva, जब हम इस ईगो को अथवा आकाश तत्व को जीत लेते हैं या अहंकार या अहंकार को जीत लेते हैं, वी कैन सी फुली द लाइट ऑफ आत्मा, तो हम अपनी आत्मा का पूरा प्रकाश दिखाई देता है। कुंडली देन क्रॉसेस टू द नेवल प्लेक्सस, तब कुंडली वहाँ पहुँच जाती है ऊपर वायु विशुद्ध चक्र बोलते हैं। टू पेटल लोकल शोन बिटवीन द टू आईज, वो तो क्या होता है, ये महापुरुष की केवल दो ही पत्ते हैं, दो आंखों के बीच में माथे में जगह, उसके बीच में एक तीसरी आई भी बोलते हैं उसको, थर्ड आई। तो यहाँ पर दो पेटल है केवल, टू आईब्रोज। दिस मेडल प्लेक्सस इज द ऑर्गन ऑफ क्लियर वाइल एंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ लोर्स। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड द थर्ड तीसरी आंख, शिव भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली थी, तो हम भी इस तीसरी आंख हमारे पास भी है, लेकिन हमारी खुलती नहीं, हम खोलते नहीं, हम संसार के चक्के में पड़े हुए हैं, इसको छोड़ना बहुत माया दिखता है। भगवान कहते हैं मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, हमें भी ना जाने कहां से माया आके पकड़ लेती है, संतों को भी। दिस इज द चक्र वेयर द डिवाइन लाइट कैन बी रिसीव्ड, ये वो चक्र है जहाँ हमें भगवान का प्रकाश मिलता है, मिल सकता है, कैन बी रिसीव्ड एंड इमिनेटेड टू द बर्ड एट लास्ट, और हम इसको संसार को भी दे सकते हैं। हैं कुंडली रीच इज हियर द इंडिविजुअल बिकम्स जीवन मुक्त का, जब हमारी कुंडली शक्ति दो आंखों के बीच, दो भ्रुवों के बीच में पहुंच जाती है तीसरी आई जिसको बोलते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे राजा जनक थे, सब कुछ करते थे, अहंकार नहीं था, कर्म भी करते थे, ज्ञान भी था उनके, उनके दोनों हाथों में लड्डू थे, एक में कहते कर्म था एक में ज्ञान था, तो हम भी ऐसे ही योगी राजा जनक की भांति बन सकते हैं। अब ये लास्ट चक्कर, द लास्ट चक्र इज द सियर ब्लैक प्लेक्सस शून्य चक्र। अब लास्ट हम आ गए हैं ना सिर पे बीच के बीच में एक, इसको बोलते हैं लास्ट चक्र को, शस्त्र नारा भी बोलते हैं, शस्त्र नारा और शून्य भी बोलते हैं, महात्मा बुद्ध ने इसको शून्य बोला, हम सिर्फ लोग शस्त्र नारा बोलते हैं। हर चीज रिप्रेजेंटेड बाय थाउजेंड पेटल, जिसमें पेटल ही पेटल है, मतलब कमल का फूल है जिसमें हजारों पंखुड़ी है, अंडर द स्कल खोपड़ी के अंदर, बाहर नहीं दिखता हमको, हमारी जो खोपड़ी इसके अंदर दिखती हो। दिस इज द प्लेस ऑफ द ऑलमाइटी, यहाँ पर ऑलमाइटी सब शक्तिमान ब्रह्म रहते हैं। इट कुंडली एंटर दिस प्लेक्सस द योगी एंड ऑलमाइटी बिकेम वन, अगर हम कुंडली को यहाँ ले जाए तो योगी और भगवान एक हो जाता है, सेम थिंग मार्जिन टू ईच अदर, ऐसा होता है कि वो हमारे भीतर जो प्रकाश आत्मा का इन चक्रों से ऊपर जाते 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 अंत में ऐसे में चला जाएगा, तो तुम ही जाना तो तुम ही हो जाए ब्रह्म, भगवती ब्रह्म को जानते हैं तो ब्रह्म ही बन जाते हैं, वहाँ आकर वो हमें देखने को नहीं अनुभव करने को मिलता है। वन एंड द सेम थिंग मर्ज इन टू ईच अदर एज द वाटर ड्रॉप्स मर्ज इन टू द ग्रेट ओशन, मतलब बूंदे गिर रही है लेकिन ओशन में जब गिरती है तो पता ही नहीं चलता है, वो ओशन ही बन जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भगवान ही बन जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है। एंड नो रिबर्थ, और फिर दोबारा जन्म नहीं होता, नो कमिंग बैक इज पॉसिबल, फिर वापस नहीं आते, दैट इज द स्टेज ऑफ समाधि, उसको समाधि बोलती है। Swami ji told me that if we can keep away from all the desires which are simply the bondages, we can realize the light of Atma. Swami ji ne Ram Lal ji ko batate hain ki ye mujhe sab kuch bataya ki agar hum ichcha nahit ho jayenge to hum Bhagwan ke Atma ke darshan kar lenge. If we give up our ego, agar hum ahankar ko chhod denge, think that the consciousness in the body is the same as cosmic consciousness, we can be one with the almighty. अगर हम सोचे हमारे मित्र जो आत्मा है तो भगवान का प्रकाश है, तो हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। Enjoying the सेम प्रिविलेजेस जो भगवान को मिली है, प्रिविलेजेस सुविधाएं होगी हमें भी मिलेगी, विच द ऑलमाइटी एंजॉयस इफ द ड्रॉप वांट्स टू बिकम एज पावरफुल एज द ओशन, अगर एक ड्रॉप चाहे वर्षा की बूंद चाहे कि नमी ओशन बन जाए ऐसी शक्ति बस तो क्या होगा, इट हैज ओनली टू लूज हिज आइडेंटिटी एंड वाज विद द ओशन, अगर बूंद ये चाहे कि मैं भी ओशन बन जाऊं तो उसको उसके साथ मिलना होगा, अपना अलग करना, अलग से जो नाम है बूंद वो खत्म करनी होगी, जैसे हम भी अपना अलग नाम हमने रख लिया है, हमारे माता पिता ने हमारा नाम रख दिया है, जो भी नाम रख दिया है वो तो बाहर का नाम है, असली में हम आत्मा है, जब हम उस ऑलमाइटी से मिलेंगे, पूर्ण ब्रह्म से मिलेंगे, हम भी देही बन जाएंगे, then the drop becomes the ocean itself having the same power and force as the ocean, उस बूंद में भी वही शक्ति आ जाएगी जो ओशन में है, लाइक द व्हील विच हाइड द लाइट ऑफ आत्मा फ्रॉम अस, इसलिए संसारी जितनी इच्छाएं चाहनाएं वासनाएं हैं ये हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए पर्दे हैं, आज में यही तक आपको श्याम लाल सिंह जी के जो उन्होंने स्वामी जी से वार्ता की है और स्वामी जी ने उनको बताया है, मैंने अपने जीवन में रियलाइज भी किया है, वो आपको पढ़ के सुनाया है, ऐसे आगे भी हम उसके इस प्रसंग को कल आगे ले जाएंगे, तो प्रिय भक्तों हमें जहाँ भक्ति करनी है वहाँ साथ साथ अगर हमें इन पांचों तत्वों का, फाइव एलिमेंट्स का ज्ञान हो और इन सात तत्वों का भी ज्ञान हो तो अच्छी बात है, अगर इतना समय नहीं मिलता है आपको कि हम ध्यान करें मेडिटेशन करें तो कोई बात नहीं, आप सहज कर्मी योगी बनो, जैसे कबीर थे, जैसे तुलसीदास थे, जैसे मीरा बाई थी, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ मिलता है, उतना ही हमें मिलता है जितने की बड़े बड़े ध्यान योगियों को मिलता है, लेकिन फॉर नॉलेज सेक जीवन के लिए ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के भीतर क्या है और क्या है और क्यों है और कैसे उसको जीता जा सकता है, शब्दों के साथ गीता मां जय माता दी।